अध्याय एक सनातन धर्म विज्ञान।
त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव, धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः।
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ब्रह्मर्षि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवन त्वत्तः, आपसे ही सनातन धर्म है, यानी आप ही सनातन धर्म के आधार स्वरूप हैं और आपसे ही सनातन धर्म प्रकट हुआ है। आप ही सगुण साकार श्री विग्रह तनु धारण करके इसकी रक्षा करते हैं। सारी सृष्टि में प्रकट होने वाले इस धर्म के परम गुप्त निर्विकार माया रहित निर्गुण स्वरूप भी आप ही हैं। ऐसा सच शास्त्रों अनुभवी आचार्यों का मत है। कितनी सहजता और स्पष्टता से सनातन धर्म का मौलिक स्वरूप प्रकट हुआ है, पर हमें तो इस सरल अर्थ को समझने में भी कठिनाई हो सकती है। अतः जैसे करुणामय सर्वेश्वर ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज को भेजा था ना, वैसे ही इसे हमें भी समझाने के लिए आचार्यों को भूतल पर भेजा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज हमारे सुबोध के लिए अपने सुप्रसिद्ध टीका श्री सुबोधिनी में इस त्वत्तः आपसे ही को थोड़ा विस्तार देकर दो बार त्वात् के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, त्वमेव नः सनातनो धर्मः यज्ञ रूपत्वात् ब्रह्म रूपत्वात् च। यज्ञ रूप होने के कारण और ब्रह्म रूप होने के कारण आप ही हमारे सनातन धर्म हैं। हमारे मन में जो सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, कि सारी सृष्टि में प्रकट हो जाने पर मूल स्वरूप की क्या स्थिति होती है और भगवान किस क्रम में अथवा व्यवस्था से प्रकट होते हैं, इसका सरल समाधान करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हुए ही यज्ञ रूप में विस्तार को प्राप्त होते हुए सारी सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। इस श्लोक में त्वत्तः जैसा ही गंभीर अर्थ वाला एक और शब्द है, परम गुह्य। सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य श्री श्रीधर स्वामी परम गुह्य का अपनी शैली में अर्थ करते हुए कहते हैं कि परमः फल रूपो अत एव गुह्यो गोप्यः, न च स्वर्गादि फलवद् विकारी भवान् किंतु निर्विकारो मतः। आप परम फल रूप हैं, इस कारण ही गुह्य गुप्त हैं, पर आप स्वर्गादि फल जैसे विकार वाले फल रूप नहीं, आप तो निर्विकार फल रूप हैं। यानी सनातन धर्म का पालन करने वालों को आप निर्विकार परम तत्व ही अविचल फल के रूप में प्राप्त होते हैं। अनुभवी आचार्यों ने केवल एक ही श्लोक की व्याख्या में सनातन धर्म के मूल स्वरूप, इसके सारी सृष्टि में यज्ञ रूप विस्तार और अविकृत अविचल फल रूप में भी इन्हीं परम तत्व की प्राप्ति को अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से बहुत ही सरलता और कुशलता पूर्वक अभिव्यक्त कर दिया है।
वेदमय सनातन धर्म। सनातन धर्म तत्व तो साक्षात भगवान स्वरूप ही है। यह तत्व जिनमें पूर्ण रूप से समाया हुआ है और जिनसे यह विज्ञान हम मानवों को प्राप्त हुआ है ना, वे वेद भी भगवत स्वरूप ही हैं। इसी रहस्य का उद्घाटन करते हुए भगवान नारायण के पार्षदों व यमदूतों के संवाद के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को धर्म तत्व का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं,
वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमा।
जिसे वेदों ने धारण किया है, जो वेद सम्मत है वह धर्म है, और जो इसके विपरीत है वह अधर्म है। ये वेद स्वयं भू हैं, यानी अपने आधार भी ये स्वयं ही है, और इन्हें रचने वाला भी अन्य कोई नहीं है। ये भगवत स्वरूप वेद तो स्वभावतः प्रकट है। सिंहावलोकन। भगवान नारायण के सत्संकल्प से सर्व वेदमय स्वयं भू ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पर भगवान तो अब भी सारी सृष्टि से अभिन्न ही है ना। अतः इनका मूल स्वरूप तो वैसा का वैसा पूर्ण ही रहा। ब्रह्मा जी ने भी सनातन धर्म के मूल आधार वेदों की रचना नहीं की, यह तो अनादि अनंत परंपरा है जो इन्हें स्वयं भगवान नारायण से स्वभावतः प्राप्त हुई है। इसी वेद विज्ञान से ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की है, अतः परंपरा क्रम से यही वेद विज्ञान हम सब में भी प्रतिष्ठित है। उपर्युक्त श्लोकों में चारों ब्रह्मर्षि और भगवान नारायण की पार्षद प्रकारांतर से इसी सत्य तथ्य को बहुत सार्थक रूप से प्रकट कर रहे हैं। सनातन धर्म। हाँ, सनातन धर्म स्वरूपतः अनादि अनंत है। प्रत्येक कल्प में सृष्टि रचना के साथ ही साथ यह सनातन वैदिक धर्म प्रकट होता है। इस सनातन धर्म का मौलिक स्वरूप तो नित्य है ना, अतः यह किसी भी देश काल में सीमित नहीं है। किसी भी देश काल में जन्म लेने वाले व्यक्ति द्वारा इसके मौलिक सिद्धांतों का प्रणयन नहीं होता, अतः स्वतः प्रकट होने वाले इस सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत है। यह सारी सृष्टि भी एक ही इकाई के रूप में संचालित है ना, अतः इसका आधार सारी सृष्टि का शाश्वत धर्म भी एक ही है, एक ही हो सकता है। हम सभी मानव भी सृष्टि के अंतर्गत ही हैं, अतः सृष्टि का शाश्वत धर्म ही हमारा भी शाश्वत धर्म है। इस एक ही शाश्वत धर्म में सृष्टि के सारे ही रहस्य समाहित हैं। एक ही परम सत्ता को लेकर निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार व इनके ही अंतर्गत भेद प्रभेदों सहित जितनी भी सांप्रदायिक मान्यताएं वर्तमान में प्रचलित है ना, इन सब का मूल एक ही सत्य सनातन धर्म है। अतः सनातन धर्म में इन सब संप्रदायों का समान आदर है। यह एक शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो वस्तु किसी भी देश काल की सीमा में निर्मित होती है ना, वह नश्वर होती है। अतः भविष्य में किसी न किसी देश काल में नष्ट होना ही उसका प्रारब्ध है। इसी कारण भिन्न भिन्न देश काल में प्रकट होने वाले अवांतर भेद युक्त इन संप्रदायों के बाह्य रूप काल व क्रम से अतीत मूल स्वरूप तो नित्य निरंजन होने से बना ही रहता है। सृष्टि के प्रारंभिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो सृष्टि रचना के प्रारंभ में भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के रूप में जिनका अभी हमने पुण्य स्मरण किया है, वे सनक, सनंदन, सनातन, सनत ब्रह्मर्षि कुमारों के पश्चात ऋषियों का जन्म हुआ। सृष्टि के कारण जगत की पृष्ठभूमि में ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से जन्मे इन ऋषियों के परम विशुद्ध मन में सृष्टि सृष्टा के मूल स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होते ही उन्हें समाधि में वेद ऋचाओं का साक्षात्कार हुआ था। सृष्टा सृष्टि के इस विज्ञान को ही वेद विज्ञान कहा जाता है। ऋषियों ने इन वेद मंत्रों का समाधि में साक्षात्कार किया था, अतः वे मंत्र दृष्टा कहलाते हैं, ऐसा सुप्रसिद्ध है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। अतः हम सरलता पूर्वक समझ सकते हैं कि ऋषियों ने इस सनातन वैदिक धर्म का एक भी मौलिक सिद्धांत अपने मन से नहीं बनाया। यह तो सृष्टि के कण कण में प्रतिष्ठित है ना। अतः सनातन धर्म तो विशुद्ध विज्ञान ही है। इसमें तो अवैज्ञानिक दृष्टि को ही अधर्म माना है। यह वेद विज्ञान ही सृष्टि के रूप में परिणत हुआ है ना। अतः सनातन धर्म में तो जो वैज्ञानिक है वही वैधानिक है। इसलिए हम क्रमशः सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांतों के अन्वेषण से सृष्टि की वैज्ञानिक व्यवस्था को और सृष्टि की वैज्ञानिक व्यवस्था से सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांतों का मर्म और दोनों से हाँ अपने आप को आत्म परमात्म तत्व को जानने वाले हैं। यही हमारी प्राचीन परंपरा है। जिज्ञासा, अभी अभी हमने चर्चा की है कि सनातन धर्म तो भगवत स्वरूप ही है, भगवान से ही प्रकट हुआ है। साथ ही हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि भगवान से ही स्वभावतः प्रकट होने वाले वेद भगवत स्वरूप हैं। हमने यह भी जाना है कि ब्रह्म स्वरूप सनातन धर्म का ही सारी सृष्टि में यज्ञ रूप विस्तार हुआ है। अतः सनातन धर्म तो सृष्टि के कण कण में समाया है। भगवान सनातन धर्म श्रुति तीनों स्वरूपतः एक है और इन्हीं का सृष्टि रूप में प्रकटीकरण हुआ है। इसको समझने में थोड़ी उलझन होती है ना, अतः हम इसे थोड़ा सा विस्तार देते हैं। वाक तत्व, देखो भाई, हम अपना और अपने से भिन्न किसी अन्य का अनुभव भी करते हैं और अपने मन के भावों को अभिव्यक्त भी करते रहते हैं, है ना? हमारे जैसे ही सारे सृष्टि में किसी भी रूप में उत्पन्न होने वाले प्राणियों में ये दोनों शक्तियां स्वभावतः निवास करती हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति की इस शक्ति को कहते हैं वाक। सरल भाषा में कहें तो वाणी। किसी अन्य की अनुभूति और अन्य के लिए ही अभिव्यक्ति तो किसी न किसी भाव संवेदना के रूप में ही होती है। और यह तो हम जानते ही हैं कि इस स्थूल पृथ्वी पर तो इन भाव संवेदनाओं का प्रारंभिक अनुभव पंचभूतों की इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भाव संवेदनाओं से ही होता है। पृथ्वी पर तो हम वैकरी वाक का ही प्रयोग करते हैं। हमारी जीभ से ही हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं और श्रवणेन्द्रिय से अन्य के वैखरी वाक में ही अभिव्यक्त होने वाले भावों को सुनते हैं। ये दोनों अभिव्यक्ति और अनुभूति के करण हैं। शब्द रूप भाव संवेदनाओं के अनुभव की शक्ति श्रवणेन्द्रिय में और इन्हीं की अभिव्यक्ति की शक्ति वागीन्द्रिय में निहित है। एक ही भाव संवेदना की अनुभूति और अभिव्यक्ति के करण अलग अलग होने पर भी ये दोनों हैं तो एक शब्द रूपी भाव संवेदना के ही दो अलग अलग साधन है ना। अतः ये तो मूल में एक वैखरी वाक शक्ति के ही दो रूप हैं। इस प्रकार सारी सृष्टि का व्यवहार एक ही शक्ति के अनुभूति और अभिव्यक्ति इन दो रूपों में प्रकट होने से ही साधित होता है। हमने तो अभी हमारी प्रारंभिक धारणा के रूप में वैखरी की ही चर्चा की है, पर चेतना के भिन्न भिन्न धरातलों पर एक ही वाक तत्व परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी इन चार रूपों में अनुभूत अभिव्यक्त होता है। परावाक, सृष्टि रचना के पूर्व परम अस्तित्व पर ब्रह्म परमात्म तत्व का एकमेवा द्वितीय स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हुए ही जो स्वरूपानुभव है वह तो इस सृष्टि के परे है ना। अतः इसे परावाक कहते हैं। इस नित्य स्वरूप में अन्य तो कोई है ही नहीं, अतः किसके लिए अभिव्यक्त हूँ? केवल अपने आप के लिए, अपने आप ही है ना। अतः अनुभूति व अभिव्यक्ति जैसा भेद नहीं रहता। अनुभूति व अभिव्यक्ति की इस अभेद स्थिति को ही परावाक कहते हैं। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि शुद्ध चैतन्य ही परावाक है। अव्यक्त स्वरूपा परा, चैतन्य कभी भी किसी अन्य के लिए प्रकट नहीं होता। अरे, चैतन्य के लिए तो अन्य कोई है ही नहीं, भेद तो शक्ति की ही लीला है। अतः शक्ति के साम्राज्य में परा का अखंड स्वरूप तो अव्यक्त ही रहता है। करण रहित परा, जब अपने आप के लिए ही स्वतः भेद रहित अनुभूति अभिव्यक्ति होती है ना, तब किसी करण की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। अतः आत्म चैतन्य के अनंत स्वरूप की यह अनुभूति करण रहित अनुभूति कहलाती है। अपने आप के अनुभव के लिए भी करण की आवश्यकता नहीं होती। अतः किसी भी करण में आत्मभाव वाले को करण से शुद्ध चैतन्य की अनुभूति भी नहीं होती, नहीं हो सकती। अव्यक्त स्वरूपा परा तो करण रहित स्वरूपानुभूति है। समन्वित शक्ति रूप करण, अपने से भिन्न का नगण्य सा भी बोध भेद बना देता है। अतः अब तो करण के बिना अपने से भिन्न के प्रकट होने वाले भावों का अनुभव व अपने से भिन्न के लिए ही अभिव्यक्ति भी संभव नहीं होती ना। अतः इस कारण ही इस कारण जगत में समन्वित शक्ति के रूप में करण प्रकट होते हैं। भावों को अभिव्यक्त करने वाले ब्रह्मा जी का जिनके प्रति भावाभिव्यक्ति हुई है, उन भगवान से भेदाभेद संबंध है। अतः अनुभूति और अभिव्यक्ति के करण भी समन्वित शक्ति रूप ही हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि अनुभूति के करण ज्ञानेन्द्रियां और अभिव्यक्ति के करण कर्म शक्ति वाली कर्मेन्द्रियां दोनों मन से ही नियंत्रित होती हैं। अतः अनुभूति अभिव्यक्ति की समन्वित शक्ति ही मन है। ऐसी समन्वित मानसिक शक्ति का जब निर्णयात्मिका शक्ति बुद्धि से समन्वय होता है ना, तो उसमें अहम के स्तर पर एकात्म भाव हो जाता है। इस एकात्म भावापन्न शक्ति में ही पश्यंती वाक रूपी भाव संवेदना को धारण करने की शक्ति प्रकट होती है। यानी ऐसी समन्वित शक्ति ही पश्यंती वाक के रूप में प्रकट होती है। शक्ति का आश्रय चैतन्य, किसी भी करण से शुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, यह नितांत सत्य है। पर बिना सत्य स्वरूप चैतन्य के कोई भी करण किसी भी भाव संवेदना का अनुभव या उसका संप्रेषण नहीं कर सकता। चैतन्य के आश्रय से ही अहम सहित ये सारे ही करण भाव संवेदनाओं का अनुभव या इनका संप्रेषण कर पाते हैं। इस भाव भूमि में आत्म चैतन्य का तो स्पष्ट बोध संभव नहीं है, शक्ति समन्वित चैतन्य का बोध ही होता है। अतः आत्म स्वरूप नहीं, आत्म भाव के आंतरिक विस्तार का अनुभव होता है। आत्म भाव के आंतरिक विस्तार का अनुभव देने वाली इस सद्भाव शक्ति रूपा वाक को पश्यंती वाक कहते हैं। पश्यंती इति पश्यंती, सत के सर्वाधिक निकट होने से चेतना के इस धरातल पर सत्व की प्रधानता होती है। अतः पश्यंती वाक सत्व शक्ति रूपा है। सत्यलोक, सत्यलोक सद्भावमय है, अतः इसमें अनुभूति अभिव्यक्ति के लिए श्रवण दर्शनादि भाव संवेदनाओं की घनीभूत पुंज रूपा पश्यंती वाक का ही प्रयोग होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पश्यंती वाक ही सत्यलोक के रूप में प्रकट होती है। स्वरूप पर भाव का आरोपण, ध्यान से देखिए तो चेतना के इस धरातल पर दो बातें हो गई हैं। एक तो चैतन्य व दूसरा सद्भाव। सत्यलोक में यह पश्यंती वाक अपने परम आश्रय शुद्ध चैतन्य और शुद्ध भाव शक्ति के समन्वित रूप में प्रकट होती है। अतः यहाँ तो चैतन्य भी ब्रह्म भाव के रूप में ही प्रकाशित होता है। तप का रूप, अब किसी को चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करनी हो तो इन भाव वृत्तियों की परे होना पड़ेगा। इन भाव वृत्तियों के केंद्र में तो चैतन्य स्वरूप ही है, अतः वृत्ति रहित होते ही आधार स्वरूप चैतन्य तो स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसी कारण मात्र मन के वृत्ति रहित होने जितना तप ही यहाँ अपेक्षित है, और स्वहलोक के सर्वोच्च शिखर सत्यलोक में विराजमान ब्रह्मा जी ने यही तप किया था। लोक सृष्टि, इस सर्ग रूपी सत्यलोक में जो चैतन्याश्रित पश्यंती वाक रूपा परस्पर संबद्ध अनेक भाव संवेदनाएं हैं ना, उनमें से प्रत्येक भाव संवेदना के पुंज को केंद्र बनाकर ही विसर्ग का प्रारंभ हुआ है। अतः इसी क्रम से क्रमशः स्वः, भुवः, भूः आदि लोकों की सृष्टि हुई है। मध्यमा वाक, लोक सृष्टि के क्रम में परम तत्व से विमुख ये भाव संवेदनाएं अपने अपने भाव केंद्रों को आधार बनाकर ही गतिशील होती हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण इन वेगवती भाव संवेदनाओं से ही तेजोमय भुवर लोक की सृष्टि होती है, यानी सत्वमयी पश्यंती वाक ही निम्नगामी रजोगुणी प्रवाह के कारण मध्यमा वाक रूपी भुवर लोक में परिणत होती है। वाक तत्व की दृष्टि से देखें तो चैतन्याश्रित सात्विक भाव के साथ रजोगुणी प्रबल प्राण शक्ति का भी समावेश हो जाने के कारण ही भुवर लोक की वेगमयी वाक मध्यमा वाक कहलाती है। अब प्राण शक्ति के प्रबल वेग के कारण अंतर आ जाता है, अतः सत्यलोक जैसा भेदाभेद संबंध अब नहीं रहता, परंतु प्रवाह की निरंतरता के कारण भेद का भी उतना अनुभव नहीं होता। अनुभूति और अभिव्यक्ति के लिए अब अलग अलग करणों की अपेक्षा होती है, पर तब भी ये करण शक्ति रूप ही होते हैं। स्पंदनात्मक समानता, ये करण अलग अलग भाव संवेदनाओं वाले स्वभाव के होने के कारण इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में भी भाव संवेदनात्मक भेद होता है, और ज्ञानेंद्रियों का भी कर्मेंद्रियों से अनुभूति अभिव्यक्ति की क्षमता का भेद होता है। पर ये भाव संस्कार शक्ति रूप ज्ञानेंद्रियों से भीतर संप्रेषित हो या शक्ति रूप कर्मेंद्रियों से बाहर संप्रसारित हो, प्राण तो दोनों के संवाहक हैं, अतः मध्यमा वाक रूपी रजोगुणी भाव स्पंदनों का प्रभाव सभी इंद्रियों में एक समान व्याप्त रहता है। प्राण का आरोपण, भुवर लोक में यह मध्यमा वाक तो परम आधार विशुद्ध चैतन्य स्वरूप परावाक और सत्वमयी शुद्ध भाव शक्ति रूपा पश्यंती वाक और तेजोमयी प्राण शक्ति के सम्मिलित रूप में प्रकट होती है ना, अतः अब चैतन्य स्वरूप तो शुद्ध सात्विक भाव और भाव पर भी रजोगुणी प्राण आरोपित हो जाते हैं, अतः यह तो और भी नेपथ्य में चला जाता है। इसी कारण अब तो आत्म स्वरूप ही नहीं आत्म भाव के विस्तार का अनुभव भी नहीं होता, आत्म भाव भी सीमित रूप में ही अनुभव में आता है। तप का रूप, इस अवस्था में चैतन्य स्वरूप तो दूर की बात है, अब तो शुद्ध भाव संवेदनाओं का अनुभव करने के लिए भी एक ही भाव संवेदनामय वृत्ति की निरंतरता की अपेक्षा रहती है, अतः सत्यलोक की अपेक्षा तप के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी अब तो सद्भाव पूर्वक प्राण शक्ति के प्रबल प्रयोग से ही तप प्रारंभ करना पड़ता है। वैखरी, भुवर लोक का विसर्ग ही भूलोक कहलाता है। इस भूलोक में तो हमें हमारे शरीरों सहित स्थूल पिंड ही पिंड दिखाई देते हैं। इन सभी पिंडों का अपना अपना आकार और अपनी अपनी सीमाएं होती है ना, अतः स्पष्टतः भेद ही भेद प्रकट होता है। सीमित आत्मभाव, भाई अब तो चैतन्य स्वरूप का स्पष्ट बोध और आत्मभाव का विस्तार आदि उच्च स्तरों के अनुभव तो रहते नहीं, अतः देह में ही अध्यास हो जाने के कारण शरीरों के प्रति आत्मभाव को ही चैतन्य स्वरूप आत्मा मान लिया जाता है। ओह, अब तो इन शरीरों की देश कालगत सीमाओं और इन सीमाओं के कारण शरीरों में भी भेद ही भेद होने से इनमें यह आत्मभाव भी देह जितना ही सीमित और खंडित ही होता है। इंद्रियों का स्थूल रूप, इस भेद भूमि में तो शरीरों के साथ ही शरीरस्थ अनुभूति और अभिव्यक्ति की शक्ति भी पूरी पूरी अलग ही होती है, यानी इनके करण भी अलग अलग ही होते हैं। अनुभूति भी स्थूल की और अभिव्यक्ति भी स्थूल की ही होने के कारण ये शक्ति रूप करण भी स्थूल शरीरों के नेत्रादि स्थूल गोलकों में ही स्थित होते हैं। इस सीमित आकार वाली तामसिक स्थूलता के कारण ही शब्द आदि सीमित और खंडित भाव संवेदनाएं रजोगुणी वेगपूर्ण आघात करते करते स्थूल पिंडों से परावर्तित या विकृत होते हुए ही मन तक पहुंचती हैं और ऐसे ही अभिव्यक्त भी होती हैं। अतः विखर से प्रकट और ग्रहण होने वाली इस आघात जन्य वाक को वैखरी वाक कहते हैं। हम स्थूल जगत में रहने वाले स्थूल शरीरधारियों के लिए तो भावों की अनुभूति और अभिव्यक्ति आदि सारे ही व्यवहार इस वैखरी वाक से ही संपन्न होते हैं। अतः यह पृथ्वी वैखरी वाक रूपा ही है। इसी कारण शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वैखरी विश्व विग्रह आवृत्त प्राण वैखरी। अब तो हम सरलता से समझ सकते हैं कि यह वैखरी वाक तो परम आधार स्वरूप परावाक और सत्वमयी भाव शक्ति पश्यंती वाक और गतिशील रजोगुणी प्राण शक्ति रूपा मध्यमा वाक तथा तामसिक स्थूल पिंडों में वायु के सहयोग से आघात जन्य भाव संवेदना रूपा है। तप का रूप, किसी स्थूल देहाध्यास वाले को चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि करनी हो तो अब उसके तप का क्या रूप होगा रे भाई? उसे तो स्थूल शरीर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सोचिए तो, अब स्थूल शरीर का तप कैसा होगा? भावात्मक एकत्व। इस ओर तो आपका ध्यान अवश्य ही गया होगा कि भले ही ये सारी भाव संवेदनाएं स्थूल रूप में ही प्रकट क्यों न हो, पर अब भी इन सब स्थूल भूतों से इनकी कारण रूपा स्पर्श रूप रसादि सूक्ष्म भाव संवेदनाएं ही प्रकट होती हैं। करणों से अनुभूति भी इन सूक्ष्म भाव संवेदनाओं की ही होती है और अभिव्यक्ति भी इन सूक्ष्म भाव संवेदनाओं की ही होती है। अतः अनुभूति व अभिव्यक्ति के बाह्य करण अलग अलग होने पर भी इन सब में इस भावात्मक एकता के कारण ही इन सभी प्रकार की भाव संवेदनाओं का अनुभव करने वाला अंतःकरण तो एकमात्र भावग्राही मन ही है। अतः जहाँ बाह्य करणों की उतनी बाध्यता नहीं है, केवल शुद्ध सात्विक मन के स्तर पर ही सारा व्यवहार सुसंपन्न होता है ना, वहाँ अनुभूति व अभिव्यक्ति की शक्ति में स्वभावतः एकत्व ही होता है, यह तो स्वतः सिद्ध है। जब शुद्ध सात्विक भाव के स्तर पर एक अंतःकरण ही अपेक्षित है, तब करण कारण के परे शुद्ध चैतन्य में तो करण रहित वाक तत्व का स्वरूपतः एक ही होना स्वतः सिद्ध है। इसी वाक तत्व की परा से वैखरी तक की यज्ञ रूपी प्रक्रिया को अति संक्षेप में समझाते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं,
यथा नलः केनिलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यधिमध्यमानः अणुः प्रजातो हविषासमिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियम् हि वाणी।
जैसे सभी के रूप को प्रकाशित करने वाली भी और सभी प्रपंच को आत्मसात करके अपने ही भीतर समाहित करने वाली भी अग्नि, काष्ठ में स्थित आकाश अर्थात रिक्त स्थान में अव्यक्त ऊष्मा के रूप में रहती है। यज्ञ के समय जब एक दूसरे से भिन्न अभिन्न स्थिति वाली दो अरण्यों का शक्तिपूर्वक मंथन किया जाता है, तब वायु के सहयोग से वह अव्यक्त अग्नि अणु के रूप में प्रकट होती है और इस यज्ञ में समिधाओं की आहुति देने पर प्रबल रूप से प्रज्वलित हो जाती है। सभी को व्यक्त करने वाले वाक् तत्व का स्वरूप भी ऐसा ही है। आकाश का गुण शब्द होते हुए भी जब किसी अन्य को विषय नहीं बनाता, अपने आप में ही स्थित रहता है, तब तक वह अव्यक्त ही रहता है। जब ऊपर नीचे की दो अरण्यों की भांति आत्मभाव पूर्वक समन्वित शक्तिमय करण किसी को भेदाभेद रूप से अभिव्यक्ति का विषय बनाते हैं, तब हृदयाकाश में आत्म मंथन से यही अव्यक्त वाक् तत्व अणु की भांति सूक्ष्म रूप से व्यक्त होता है। विषय रूपी समिधाओं के यज्ञ कुंड रूपी करणों में आहुति लगते रहने से प्राणाग्नि के सहयोग से प्रज्वलित अग्नि भाव की भांति इसी शब्द ब्रह्म स्वरूप वाक् तत्व के क्रमशः परापश्यंती मध्यमा और वैखरी रूप में मैं स्वयं ही व्यक्त होता हूँ। तथैव में व्यक्तिरियम ही वाणी, इस प्रकार चैतन्य स्वरूप ही विश्व विग्रह वैखरी के रूप में व्यक्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ ध्वनि के रूप में व्यक्त वाक् ही नहीं, अग्नि का उदाहरण देकर अव्यक्त स्वरूप का स्वभावतः यज्ञ रूप प्रक्रिया अनुसार अनेक रूपों में प्रकट होने व अग्नि में ही सभी को भस्मीभूत होने का समान ही परावाक में ही वाक के इन सभी रूपों के लीन होने की ओर गंभीर संकेत कर रहे हैं। सिंहावलोकन। प्रारंभ से देखिए तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपा परावाक ही सद्भाव शक्ति पूर्वक पश्यंती वाक के रूप में प्रकट होती है। पश्यंती वाक के रूप में प्रकट होने पर भी इसका परास्वरूप तो वैसा का वैसा ही बना रहता है। भाई, जो बनता है वही तो कभी न कभी बिगड़ता भी है, पर जो कभी किसी की प्रक्रिया अनुसार बना ही नहीं वह तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना। अतः यह चैतन्य स्वरूप परावाक ही सद्भाव शक्ति रूपा पश्यंती वाक का आधार बनी रहती है। पश्यंती वाक ही रजोगुण की अधिकता होने पर मध्यमा वाक के रूप में परिणत होती है। परिणत होने पर भी इसका सत्वमय स्वभाव सद्भाव शक्तिमय पश्यंती रूप तो वैसा का वैसा ही बना रहता है और यही कारण रूपा पश्यंती वाक कार्य रूपा मध्यमा वाक का आधार ही नहीं, उसे गति देने वाली कारक भी होती है। मध्यमा वाक ही तमस बढ़ जाने से स्थूल पिंडों में वैखरी वाक के रूप में अभिव्यक्त होती है। वैखरी के रूप में परिणत होने पर भी इसका कारण प्राण शक्तिमय मध्यमा रूप तो वैसा का वैसा ही बना रहता है और यही कारण रूपा प्राण शक्ति कार्य रूपा वैखरी वाक को अभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान करती है। हमारे द्वारा वैखरी वाणी में उच्चारित प्रत्येक शब्द में प्राण शक्ति, उसमें भी विशिष्ट भाव और भाव का भी आधार अस्तित्व समाहित रहता है। अतः वैखरी के आधार के रूप में मध्यमा, पश्यंती और परा अब भी अवस्थित हैं। वाक् तत्व की इस वैज्ञानिक व्यवस्था को देखकर हम यह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाक कारण कार्य परंपरा से संबद्ध हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक कार्य कारण पर ही निर्भर रहता है। यदि कारण न रहे तो कार्य की उत्पत्ति ही नहीं हो सकता और कार्य उत्पन्न होने के पश्चात इसका आधारभूत कारण नष्ट हो जाए तो कार्य रूप परिणाम भी तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः वर्तमान में वैखरी के रूप में वाक् तत्व का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि इसकी आधार स्वरूपा मध्यमा, पश्यंती और चैतन्य स्वरूप परा का अस्तित्व भी नित्य निरंतर बना हुआ है। हमारे भीतर भी ये सब प्रतिष्ठित है ना, अतः हमारे अपने अनुभव से भी यही प्रमाणित होता है। देखिए तो प्रतिष्ठित है ना। भगवत स्वरूपा सृष्टि। अब तो हम सरलता पूर्वक समझ गए हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूपा परावाक तो नित्य है, स्थूल रूप में प्रकट होने पर भी इसका तत्वतः चैतन्य स्वरूप तो अब भी बना ही हुआ है। अतः चैतन्य स्वरूप से प्रकट होने वाली वा अब भी चैतन्य स्वरूप आधार में ही स्थित यह व्यक्त सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। सनातन धर्म का मौलिक स्वरूप। द्री धारणे धातु से धर्म शब्द निष्पन्न होता है, जो धारण करता है और जिसे धारण किया जाता है वह धर्म। ऊपर से अलग अलग स्थूल पिंडाकार दिखाई देने पर भी इन सब रूपों को धारण करने वाला आधार तो एक चैतन्य स्वरूप ही है ना। अतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही परम धर्म, और यही परम धर्म जिन जिन देश काल में मानवों प्राणी पदार्थों का व्यक्तिशः आधार बनता है, वहां वहां उन उनकी पात्रता के अनुरूप उनसे संबंधित स्वधर्म कहलाता है। यही सनातन धर्म का मौलिक स्वरूप है। वेद मंत्र स्वरूपा वाक। शुद्ध चैतन्य स्वरूप और स्वभाव शक्ति ही समन्वित होकर सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। हाँ, यथार्थ में अस्तित्व की स्वात्मानुभूति का उल्लास ही स्वतः स्वभावतः सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। चैतन्य के भिन्न भिन्न धरातलों पर सृष्टा सृष्टि की इस परिणत अभिव्यक्ति स्वरूप को ही वेद मंत्र कहते हैं। अतः वेद भी परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाक रूप ही है। शुद्ध अस्तित्व अनेक रूपों में प्रकट होने वाला अस्तित्व, अस्तित्व की अनुभूति अभिव्यक्ति सब भगवत स्वरूप ही है। स्वरूपतः एकत्व। अतः हम दृढ़ता और प्रामाणिकता पूर्वक कह सकते हैं कि एक ही परम तत्व के तीनों स्वरूप भगवान, सनातन धर्म और वेद तत्वतः एक ही हैं। व्याकरण व्यवहार। देखो भाई, यह एक ही अस्तित्व चेतना के भिन्न भिन्न धरातलों पर स्वः, भुवः, भूः आदि लोकों के आभासी रूप में परिणत होता हुआ स्वभावतः अभिव्यक्त हो रहा है ना। इस अभिव्यक्ति में अनेक प्राकृत नियमों उपनियमों का उपयोग हो रहा है। अस्तित्व के भाष्य रूप वेद मंत्र भी परा से वैखरी तक की यात्रा करते हुए स्वभावतः ही अभिव्यक्त होते हैं ना। अतः वेद मंत्र मंत्रार्थ की स्वाभाविक अभिव्यक्ति में भी यही प्राकृत नियम कार्य करते हैं। इन प्राकृत नियमों की व्यावहारिक संज्ञा ही संस्कृत व्याकरण है। हाँ, ऋषियों ने देव भाषा संस्कृत व्याकरण का एक भी मौलिक नियम अपने मन से नहीं बनाया। जो नियम प्रकृति के सारे ही पृथक पृथक स्तरों में प्रतिष्ठित और व्यवहारों में उपयोग में आते हैं ना, उन्हें ही अपनी अनुभूति से केवल प्रमाणित और परिभाषित किया है। सृष्टि के ये सारे ही व्यवहार केवल स्थूल जगत में ही नहीं, सूक्ष्म जगत और कारण जगत में भी संपन्न हो रहे हैं ना। अतः ये प्राकृत नियम तो वहां भी स्वाभाविक रूप से कार्य कर रहे हैं। वेद मंत्रार्थ भी क्रमशः अपने आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक स्वरूप में स्थूल सूक्ष्म कारण को प्रकट परिभाषित करते हुए चैतन्य स्वरूप में ही पूर्णतः प्रतिष्ठित होते हैं ना। इसीलिए वैदिक संस्कृत व्याकरण में भी केवल स्थूल व्यवहार ही नहीं, स्वलोक तक की अभिव्यक्ति के प्राकृत नियमों का समावेश हुआ है। इस कारण ही स्थूल सूक्ष्म के साथ ही कारण जगत के गंभीर रहस्यों को प्रकट करने की क्षमता भी इस संस्कृत व्याकरण में अंतर्निहित है। इसी रचना कौशल के कारण केवल वेद मंत्र ही नहीं, अन्य मंत्रों के द्वारा भी शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से अनुभूति पूर्वक परम तत्व की हमारी अंतर यात्रा सुसंपन्न होती है। इतनी दैवी विशेषताओं को अपने आप में समाहित की हुई सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार वाली सृष्टि के एकमात्र सनातन धर्म के रहस्यों को प्रकट करने वाली विश्व की एकमात्र सुसंस्कृत भाषा देव भाषा संस्कृत ही है। इसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए सनातन धर्म के ये परमोज्वल रहस्य जिन शास्त्रों में संरक्षित हुए है ना, उनको वाक् तत्व के मर्मज्ञ ऋषियों ने आर्ष वांग्मय जैसा परम सार्थक संबोधन दिया है। हम वैज्ञानिक दृष्टि से ही सृष्टि की प्राकृत व्यवस्था से वैदिक संस्कृत व्याकरण के नियमों को और वांग्मय में वर्णित संस्कृत व्याकरण के नियमों से सृष्टि की व्यवस्था और दोनों से हाँ अपने आप को जानने का सत्प्रयास करेंगे। धारण संप्रेषण। अभी तक हमने एक ही चैतन्य स्वरूप की विविध विविध रूपों में अभिव्यक्ति के क्रम को देखा है, पर इस सृष्टि से स्वरूप तक की अनुभूति के क्रम को तो मात्र स्पर्श ही किया है। ऋषियों को ये अनुभव कैसे हुए थे? उन्होंने इन्हीं प्राकृत नियमों का सदुपयोग करते हुए देश काल पात्रता के अनुरूप इन अनुभवों को अपने शिष्यों में कैसे संचरित संप्रेषित किया था, यह जानना तो अभी शेष ही है।